am looking forward to hear from many sisters.
और हम आशा करते हैं कि बहुत सारी बहनों से हम आज हम सुन सके.
When I was praying and considering what to share today to encourage our sisters.
और जब मैं आज प्रार्थना कर रहा था कि मैं क्या बहनों के साथ मैं बांट सकूं.
This is a theme that came to my heart.
और ये एक विषय है जो मेरे हृदय में आया.
Power of Jesus to transform and restore broken lives.
और यीशु मसीह का सामर्थ्य जो है, जो पूरी तरह से टूटा हुआ जो जीवन है उसको पूरी तरह से परिवर्तित करने के लिए.
We read in John chapter 20.
यूहन्ना 20 अध्याय में हम पढ़ते हैं.
John chapter 20.
यूहन्ना 20.
Here after Jesus was crucified on a Friday.
और शुक्रवार को जब यीशु मसीह क्रूसित किया गया उसके बाद.
Following Sunday arrived.
और जब उसका रविवार का दिन आया उसके बाद.
And Jesus had told that he would be resurrecting.
और यीशु ने पहले कहा था कि उसका पुनरुत्थान होने वाला है.
So that Sunday day, this one we can read in verse 1, John chapter 20, verse 1.
यूहन्ना 20 उसका एक वचन हम पढ़ेंगे.
Now on the first day of the week, Mary Magdalene came early to the tomb while it was still dark, and saw the stone already taken away from the tomb.
और सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा.
It's interesting to remember. You remember when Jesus was resurrected.
और ये बहुत ही अच्छी बात है अपने याद दिलाना कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ.
He appeared first to whom?
और पहली बार वो किसको दिखाई दिया?
Which of the apostles?
कौन सा वो शिष्य था उसका?
John, Peter, James, who?
क्या यूहन्ना पत्रस अंद्रिया कौन सा वो शिष्य था जिसको पहली बार यीशु दिखाई दिया?
Not to one of the apostles.
और एक भी प्रेरित या उसके शिष्य में से कोई भी नहीं.
Jesus did not appear first to any man.
और यीशु मसीह सबसे पहले किसी भी एक पुरुष को दिखाई नहीं दिया.
He appeared to a woman called Mary Magdalene.
और लेकिन सबसे पहले वो मरियम मगदलीन जो एक स्त्री है उसको वो अपने आप को प्रकट करता है.
If you understand the story of Mary Magdalene, she was possessed with the demons. That was her past.
और मरियम मगदलीनी का अगर अतीत देखे तो वो उसके भूतकाल के अंदर दुष्टात्मा से पीड़ित वो स्त्री थी.
She was possessed with not one, two or three. She was possessed with 7 demons.
और एक दो या तीन दुष्टात्मा नहीं लेकिन 7 दुष्टात्मा से वो ग्रसित थी.
But Jesus cast out those demons and set her free.
और यीशु मसीह ने उन सारे दुष्टात्मा को निकाल कर उसको आजाद किया.
It is this woman to whom Jesus appeared first.
और इसी स्त्री को यीशु मसीह पहले दिखाई दिया.
So it's a wonderful thing to remember. It's a strong encouragement. Jesus chose to appear to a woman first when he was resurrected.
और ये बहुत ही अच्छे प्रोत्साहन है अपने आप को याद दिलाने का. जब उसको पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह का, उसने चुना कि वो पहले एक स्त्री को दिखाई दे या प्रकट करे अपने आप को.
And we can see the heart of this poor woman, Mary Magdalene.
और इस मरियम मगदलीनी के इस हृदय को आप देख सकते हैं.
When it was still dark, he went to the tomb where Jesus was buried.
और जब वो अंधेरा ही था तब वो कब्र पर गई जहाँ यीशु मसीह को गाड़ा गया था.
We read that there she did not see Jesus.
और वो हम यहाँ पे पढ़ते कि उसने वहां यीशु को नहीं पाया.
And she was standing outside the tomb and she was weeping.
कब्र के बाहर खड़ी रहकर वो रो रही थी.
And she keep on weeping and stooped and continued to look into the tomb. It was empty.
और वो रो रही थी बाहर खड़ी रहकर. उसने कब्र को भी देखा, वो पूरी तरह से खाली था.
At that time someone appeared to him.
और उस समय कोई आया और उसको दर्शन दिया.
Mary Magdalene thought it was the gardener in charge of that place.
और क्या जब मरियम ने सोचा कि वहां का जो रखवाला अगर उस जगह का है वो वहां पर होगा.
And she did not recognize it was Jesus.
और वो पहचान नहीं पाई कि ये यीशु मसीह आप है.
And Jesus met her first after his resurrection.
और यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद उसको पहले उसी को मिलता है.
And ask her this question.
और उसको ये प्रश्न पूछता है.
That's in John chapter 20 verse 15.
और 20 अध्याय के 15 वचन में.
Woman, why are you weeping?
हे नारी तू क्यों रोती है?
Whom are you seeking?
और किसको तू ढूंढती है?
And she replied, sir, if he had taken away my master, please tell me where he is. I will carry take him away.
और उसे माली समझ कर उससे कहे महाराज यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे कह कि उसे कहाँ रखा और मैं उसे उसे ले जाऊंगी.
So Jesus just called her by her first name, Mary.
और यहाँ पर पहले उसको मरियम के नाम से वहाँ पर वो बुलाता है.
So probably Jesus was saying, Mary, look, raise your face and look at my face. See who is talking to you.
और यीशु मसीह उसको बताने की कोशिश कर रहे हो कि मरियम अपने मुख को उठाकर देख कि तुझसे कौन बात करने की कोशिश कर रहा है.
Then Mary, while weeping, lifted her face and realized Jesus.
और जब वो रो रही थी तब उसने ऊपर उठा के अपने नजर को देखा कि वो यीशु मसीह खुद है.
And she was so surprised.
और बहुत ही आश्चर्यचकित वो वहां
हो गई. Jesus, the resurrected Jesus.
और यीशु मसीह जो पुनरुत्थान किया वो यीशु को देखकर.
She was saying, Rabboni, it is you, Jesus.
और वो कहते कि रबोनी हे गुरु यीशु तू है.
And we can see she must have with her. She ran and to with joy in her heart to tell the disciples that Jesus is resurrected.
और अपने हृदय में उस आनंद के साथ भागते वो शिष्यों के पास जाकर बताने लगी कि यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ है.
And that words which Jesus told Mary.
और वो वचन जो यीशु मसीह ने मरियम से कहा.
Still should resonate in our hearts.
और वो हमारे हृदय को भी पुनरुत्थान करता है.
What did Jesus ask Mary?
और यीशु मसीह ने मरियम से क्या पूछा?
Woman.
हे नारी,
why are you weeping?
तू क्यों रोती है?
So what was you trying to say?
और वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे?
We can put it in different words to understand.
और इसको दूसरे शब्दों में समझने के लिए हम कह सकते हैं.
Mary, why are you so discouraged?
और वो कहता है कि मरियम तू क्यों इतनी निराश है?
Why I see you so depressed?
तू क्यों इतनी निराशा में लग रही है?
What is the reason?
और कारण क्या है?
Why you are looking so confused and perplexed?
और बहुत ही तू confused वहाँ दिख रही है.
Do you look so helpless as if nobody is there to help you?
और तू बिना कोई मदद की कोई तेरी मदद नहीं ऐसे तू दिख रही है.
You look so tired and wearied. Why?
और बहुत ही थकी हुई बोझ से दबी हुई तू लग रही है क्यों तू ऐसी दिख रही है?
Your face shows that you are so anxious about many many things.
और तू बहुत सारी बातों की चिंता कर रही हो तेरे चेहरे से दिख रहा है.
Remember, it is I am here to help you.
और वो कह रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ तेरी मदद करने के लिए.
So that is Jesus was trying to tell her.
और ये यीशु मसीह उसको कहने की कोशिश कर रहा है.
Woman, why are you weeping?
हे नारी तू क्यों रोती है?
So dear sisters, I want to encourage you even today in your struggles, in your practical daily life. This one, what Jesus want to tell you.
और मैं बहनों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आपके संघर्षों के अंदर आपके जीवन में यीशु मसीह ये प्रश्न आपसे भी पूछना चाहता है.
Woman,
हे नारी,
why are you weeping?
तू क्यों रोती है?
Why are you discouraged?
तू क्यों निराश है?
Why are you depressed?
क्यों तू निराशा में है?
I am there to help you.
मैं तेरी मदद करने के लिए हूँ.
I imagine probably Jesus just wiped her tears.
और हो सकता है यीशु मसीह ने उसके आंसू को पोंछा होगा.
So I was thinking, we all Brother Biju said we had to live in reality.
जैसे भाई बीजू ने कहा कि हमें वास्तविकता में हमारे जीवन को जीना है.
Christian life is so real.
और मसीह जीवन जो है बहुत ही वास्तविक जीवन है.
Our relationship with Jesus is so real.
हमारा यीशु मसीह के साथ संबंध वास्तविक या सच है.
You may be a sister whose husband is not a believer.
और आप ऐसी बहन हो सकती कि आपके पति जो है विश्वासी नहीं होंगे शायद.
And he may be a nominal believer or an ungodly man.
और
maybe an evil person.
वो नामधारी मसीह हो सकता है या कोई प्रभु से दूर ऐसा व्यक्ति हो सकता है या प्रभु को नहीं जानने वाला व्यक्ति हो सकता है.
A wife cannot speak about her husband to anybody.
और वो पत्नी जो है किसी को उसके बारे में नहीं बता सकती.
In your heart you may be weeping, you may be grieving.
और आपके हृदय के अंदर आप दुखी होंगे, आप रो रहे होंगे उस कारण.
But Jesus want to encourage you, sister.
लेकिन बहनों आपको यीशु मसीह प्रोत्साहित करना चाहता
है. I am there to help you.
मैं आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ हूं.
I see your weeping.
और मैंने आपके रोने को देखा है.
I understand your aching heart.
और आपके जो टूटा हुआ जो दुख से भरा हुआ जो हृदय है उसको मैं समझ सकता हूँ.
You cannot express with many people.
आप बहुत लोगों को उसको नहीं समझा सकते.
But I can see it.
लेकिन मैं उसको देख सकता
हूँ. Be encouraged. I'll hear your prayer.
और अपने आप में ढाड़स बांधो.
And Bible says that without a word, through your character, you can win the heart of your husband.
और जैसे वचन कहता है कि शब्दों के बिना अपने चरित्र से ही आप उस हृदय को आप जीत सकते हैं.
You may be a mother who is painfully praying for your children.
हो सकते हैं कि आप एक माता हैं अपने बहुत ही दर्द के साथ अपने बच्चों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं.
For their transformation.
उनके परिवर्तन के लिए.
For their conversion.
उनका बदलाव हो इसलिए आप प्रार्थना कर रहे हैं.
But remember.
याद रखें.
Jesus want to encourage you. Woman, no need to cry.
और यीशु मसीह आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं, हे नारी आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है।
I will encourage you, I'll answer your prayer.
और मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को उत्तर दूंगा।
I will restore your children.
और मैं आपके बच्चों को पुनर्स्थापित करूंगा।
Your secret prayers are not in waste.
और आपकी जो गुप्त प्रार्थना है वो व्यर्थ नहीं है।
I am hearing your prayer.
और मैं आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुन रहा हूँ।
My own time, I'll work in your family.
और मेरे खुद के समय के अंदर मैं आपके परिवार में कार्य करूंगा।
I remember sisters who are single parent.
और मैं कई ऐसे बहनों को जानता हूँ जो सिंगल पेरेंट है या अकेले ही बच्चों को पाल रहे हैं पति के बिना।
Think about a sister who has a responsibility being the head of the family, being a mother, being a father, all these three responsibilities in one person.
और आप सोच के देखिए, एक माता के ऊपर एक माता की भी जिम्मेदारी है और एक पिता की भी जिम्मेदारी है, एक घर का मुखिया के रूप में सोच के देखिए इसको।
Very challenging situations.
और बहुत ही चुनौतीदायक ये परिस्थिति है।
But Jesus wants to comfort.
लेकिन यीशु मसीह हमें सांत्वना देना चाहता है ऐसी बहनों को।
Women, no need to weep.
और हे नारी तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, और मैं यहाँ आपके साथ हूँ आपको मदद करने के लिए।
Struggles.
और आपके सारे संघर्षों के बीच
I'm not just observer, I am in your family.
और मैं आपके परिवार में आपके मध्य में हूँ।
I'll perform this on behalf of you.
और मैं आपके बदले में इस कार्य को करूंगा।
I be encouraged.
और आप प्रोत्साहित हो।
And you may be one of the young sisters.
और हो सकता है आप एक जवान बहनों में से एक बहन हो।
Feeling lonely.
अकेला आप महसूस करते हो।
And puzzled.
और बहुत ही एक विचलित या बहुत ही प्रश्नों के बीच और ये सोचने की कोशिश कर रहे कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है,
व्हाट इज माय फ्यूचर,
मेरा भविष्य क्या है।
But Jesus want to encourage you also.
और आपको भी यीशु मसीह प्रोत्साहित करना चाहता है।
Woman, why are you weeping?
हे स्त्री तू क्यों रोती है?
I am there right with you.
और मैं वहां पर तेरे साथ हूँ।
By your side.
और तू आप तेरे मैं तेरे और हूँ।
Or one of some of you maybe some of you know we have so many young little girls in the church.
और हमारे बीच में हो सकता है कि जो छोटे-छोटे जो 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 लड़कियां हैं वो हमारे कलीसिया में हैं।
And Jesus want to encourage each one of you.
और प्रभु यीशु मसीह आप सबों को प्रोत्साहित करना चाहता है।
You may be struggling some of the problems in your life.
और कुछ समस्याओं के साथ आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे होंगे।
Which you think maybe no one is understanding me.
और आप सोचते होंगे कि वो बातें कोई भी समझता नहीं है आपके जीवन के बारे में।
But Jesus want to tell you, I am there in your life.
लेकिन यीशु मसीह आपको कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ।
I want to encourage you.
और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ।
I want to transform your life.
और मैं आपके जीवन को परिवर्तित करना चाहता हूँ।
I want to restore your life.
और मैं आपके जीवन को पुनर्स्थापित करना चाहता हूँ।
So it's a wonderful thing to remember that in our practical life the words Jesus want to tell us.
और यीशु मसीह ने जो शब्द कहे हमारे व्यवहारिक जीवन को मैं उसको याद करना बहुत अच्छी बात है।
No need to be discouraged.
और हमें कोई भी हमें निराश होने की जरूरत नहीं है।
No need to be discouraged.
और हमें निराश होने की जरूरत नहीं है।
Don't feel you are helpless.
और अपने आप को असहाय न सोचे।
Don't ever think that there is no hope for you.
और कभी भी ऐसा न सोचे कि आपके लिए कोई आशा अब नहीं है।
Jesus has the power to transform and restore our broken lives.
और परमेश्वर यीशु मसीह में वो सामर्थ्य ताकि हमारे जो टूटा हुआ जीवन है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए, उसको परिवर्तित करने के लिए।
I want to mention about another woman in the Bible that is in Luke chapter 7.
लुका 7 अध्याय के अंदर और एक स्त्री के बारे में आपको बताना चाहता हूँ।
When Jesus was invited for meal in a reputed family.
और एक एक बहुत ही अच्छे एक नामांकित परिवार के अंदर यीशु मसीह को खाने पर भोजन के लिए बुलाया गया।
A woman came there.
और एक स्त्री वहां आई।
Her name is also not mentioned there.
और वहां पर उसका नाम तक नहीं लिखा गया है।
What is mentioned is a woman from the city who is a sinner.
और वहां पर लिखा है कि एक ऐसे नगर से वो स्त्री है जो एक पापी है।
But she did something unusual, exceptional, spectacular things.
बहुत ही असाधारण एक अद्भुत बात उसने वहाँ पर किया।
A kind of strange things.
और बहुत ही एक बहुत ही अजीब या बहुत ही अलग बात उसने वहाँ पर किया।
The time she, and we can read that in Luke chapter 7.
लुका 7 अध्याय में इसे पढ़ते हैं।
She brought a inexpensive bottle of perfume.
और वहाँ पे बहुत ही एक महंगा और कीमती अत्तर वो लेकर आई।
And broke it at the feet of Jesus.
और यीशु मसीह के पैरों के ऊपर उसने उसे तोड़ दिया।
And not only that, she stood behind Jesus.
और यीशु के पीछे खड़े होकर।
Weeping.
रोने लगी।
And with the tears she wet the feet of Jesus.
और अपने आंसुओं से उसने यीशु मसीह के पैर को भिगाया।
And with her hair, she wiped those tears from the feet of Jesus.
और उस अपने बालों से उसने जो आंसू जो यीशु के पैर पर गिरे उसको उसने पोंछा.
And lying on the floor, she kissed the feet of Jesus.
और वहीं पे उस जमीन के ऊपर उसने यीशु मसीह के पैरों को चूमा.
So it's not a normal thing. A man, a woman show a really transformed. Their life was never changed by the presence of Jesus.
और यहाँ पर एक बहुत एक साधारण चीज नहीं, लेकिन एक परिवर्तित करने वाली एक जीवन की बात यहाँ पर हम देखते हैं.
An expression of unspeakable gratitude to Jesus, she did all.
और ये सारा उसने इसलिए किया क्योंकि वो बहुत ही धन्यवादी थी, उसको दर्शाने के लिए उसने ये सब किया.
Jesus had some words of appreciation.
और यीशु मसीह उसको सराहने के लिए कुछ शब्दों से उसको कहता है.
Not to the noble Pharisee who invited him for food.
और वो एक अच्छा जो फरीसी था, उस जो भोजन पर यीशु मसीह को बुला था, उसके लिए नहीं.
But about this sinful woman, whose name is also not mentioned.
और लेकिन इस पापी स्त्री के लिए वो कुछ कहता है जिसका नाम तक यहाँ नहीं लिखा गया.
Is written in Luke 7:47.
और लूका 7:47 को देखें.
For this reason I say to you, her sins which are many have been forgiven.
और इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इसने पाप, इसके पाप जो बहुत थे, क्षमा हुए हैं.
And think about this, and she is saying that. She loved much.
और इसके बारे में सोचे क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया.
God, dear sister, God has this ability to each one of to love Jesus.
और हमारे पास प्रिय बहनों ये योग्यता दी गई है कि हम परमेश्वर से प्रेम कर सके.
Such a sinful woman, when her sins were forgiven, she was restored, when she was transformed, she could love Jesus. Amazingly.
और ये बहुत ही अद्भुत बयान देखते हैं कि एक पापी स्त्री है जो परमेश्वर के उसने उस कार्य जो वहाँ पे किया, वो पूरी तरह से क्षमा हुई, पुनर्स्थापित की गई है वहाँ पर.
And in comparison, he is speaking about indirectly about Pharisee.
और वहाँ पर तुलना में वो परिसी के बारे में भी वो कह रहा है.
He is forgiven little, loves little.
और जिसका कम क्षमा हुआ होता है वो कम प्रेम करता है.
The so-called noble man, he could not love Jesus, honor Jesus, expiate. He think, I am not a sinner, I have not done anything wrong. He could love Jesus very little.
और जिसने यीशु मसीह को, उस फरीसी ने जो यीशु मसीह को भोजन पे बुलाया था, वो उसने सोचा कि मेरा तो कम माफ हुआ है, वो उस प्रकार यीशु मसीह को प्रेम नहीं कर पाया.
But this sinful woman whose sin was so much forgiven, she loved Jesus so much.
लेकिन ये पापी स्त्री जिसके बहुत ही ज्यादा पाप माफ हुए, उसने यीशु मसीह से और भी बहुत ज्यादा प्रेम किया.
So I want to have this goal in your life to love Jesus so much.
और ये अगर हमारे जीवन के अंदर में इस ध्येय को ले ले कि यीशु मसीह को हम और अधिक प्रेम करें.
Not a little bit like that Pharisee Simon.
और उस फरीसी के समान थोड़ा सा प्रेम नहीं.
Love Jesus as much as that sinful woman loved Jesus.
और जैसे उस स्त्री ने यीशु मसीह के अधिक से अधिक प्रेम किया, वैसे हम उससे प्रेम करें.
Reason is she was forgiven much.
क्योंकि इसका कारण यह है कि उसके अधिक पाप माफ किए गए थे.
Can you imagine, it's like a liberated person, she left from that home. और Jesus set her free completely and entirely.
और कल्पना करके देख सकते कि कितनी आजादी के साथ छुड़ाए जाते हुए वहां से वापस लौटी होगी वो.
And her life was never the same.
और उसका जीवन पूरी फिर एक समान नहीं रहा होगा.
I just want to say one more about one more woman and close.
और एक स्त्री के बारे में बता के मैं अंत करूंगा.
That's about Hannah, the mother of Samuel.
और यहाँ पे हन्ना के बारे में, जो शमूएल की जो माता है, उसके बारे में.
Hannah was really coveting to have a child.
और हन्ना जो है वो एक बच्चा पाने के लिए बहुत ही उत्सुक या बहुत ही उसकी इच्छा थी.
But God had closed her womb.
लेकिन परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद किया था.
And her husband had another wife.
और उसके पति की और एक पत्नी थी.
She used to always irritate and ridicule, despise Hannah.
और ये दूसरी पत्नी जो हन्नों को हमेशा परेशान करती थी, उसको बहुत ही तुच्छ जानती थी.
That if you think about the society during those time, somebody who is having no children, it is people who despise such people.
और उस समय के समाज को याद करें कि वह जब किसी स्त्री को अगर यदि बच्चे नहीं होते तो उसको बहुत ही तुच्छ जाना जाता था.
And people were despising Hannah.
और लोग हन्ना को तुच्छ जानते थे.
Especially the other wife of her husband.
और उसके पति की जो दूसरी पत्नी पनिन्ना जो थी, वो उसको तुच्छ जानती थी.
Year after year, she would continuously would be ridiculed and despised, irritated by the other woman.
और सार दल सार हर बार वो जो है, वो हन्ना जो है, उसके उस स्त्री के द्वारा, औरों के द्वारा तुच्छ जानी जाती थी.
And see some of the words written about, and Hannah was eagerly, earnestly, Lord, please grant me one child.
और यहन्ना जो है बहुत ही बहुत आतुरता के साथ परमेश्वर के पास में जाती थी, प्रभु मुझे तू अब बच्चे का एक वरदान दे।
So written in 1 Samuel chapter 1 when you had time
पहला
can
Samuel,
read it.
पहले अध्याय में इसको हम पढ़े।
It says that she was greatly distressed and prayed to the Lord wept bitterly before God.
और वहां पर वो प्रार्थना करती रही परमेश्वर के सामने और बहुत ही दुख के साथ वो वहां पर रोकर प्रार्थना कर रही थी।
Her need at that moment was so much to have a child because she was constantly under being irritated, despised and humiliated by others.
और उस समय वो इतना अधिक परेशान किए जाती थी, लोगों से तुच्छ जानी जाती थी, उसकी बहुत अधिक जरूरत थी एक बच्चा प्राप्त करने के लिए।
And she made a vow before God, God if you give me a child I'll present it to you.
और उसने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी कि अगर प्रभु तू मुझे एक बच्चा देगा मैं तेरे लिए अर्पण करूंगी उसे।
And one day she was praying in the temple.
और एक दिन वो मंदिर में प्रार्थना कर रही थी।
And she was continually praying with the bitterness in her heart.
और उसके हृदय में वो जो दुख है उस दुख के साथ वो वहां जाकर प्रार्थना कर रही थी।
Such a sense of great need, unsatisfied need and troubled heart she was praying.
और ऐसे बहुत ही असंतुष्ट हृदय के साथ वो ऐसी एक हृदय की अवस्था के साथ वो प्रार्थना कर रही है जरूरत के साथ।
And the priest Eli, he was observing this woman.
और यहाँ पर एक याजक जो एली है उसको वो देख रहा था।
And he was saying this woman is like her lips is whispering something.
और वो यहाँ पे देख पा रहा था कि उसके होंठ तो हिल रहे हैं।
Hannah, she was speaking in her heart, only her lips were moving.
और हन्ना जो अपने हृदय में ही प्रार्थना कर रही थी उसके केवल होंठ हिल रहे थे।
And her voice was not heard.
और उसका आवाज सुनाई नहीं दे रहा था।
So Eli misunderstood. She is a sinful, a drunkard woman.
और शायद जो एली याजक था उसको समझ नहीं पाया, उसने सोचा कि शायद शराब या मदिरा पीकर यहाँ पर आई है।
And that priest rebuked her. How long you'll make yourself drunk? Put away from your wine from you.
और वहां से वो है उसको डांटता है कि कितना अधिक तू इसी हालत में रहेगी, उसको शराब को जो है उसको तू बाहर निकाल दे।
Sometimes can happen someone who is supposed to take care of you can also rebuke you unnecessarily.
और कई बार हो सकता है कि जो आपकी चिंता करने वाले भी हो सकते हैं वो बिना कारण आपको इस तरह से डांट सकते हैं।
And see Hannah's words. No, my Lord, I am a woman oppressed in spirit. Oppressed in spirit.
हन्ना ने कहा कि मेरे प्रभु मैं तो दुखिया हूँ।
I have not drunk neither wine nor strong drink.
और मैंने न तो दाखमधु पिया है और न मदिरा।
I am just pouring out my soul before God.
और मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही
है। You can understand the prayer of her heart. No, it's not audible, but it's just lips moving. Such a deep pain. She is pouring out her soul before God.
और आप देख सकते हैं कि उसकी प्रार्थना देख सकते हैं कि कितने दुख के साथ वो अपने हृदय की सारी बातों को परमेश्वर के सामने उंडेल रही है।
And she said, "Do not consider your maid servant as a worthless woman."
और अपनी दासी को तू ओछी स्त्री ना जान।
For I have spoken until now out of the great concern and provocation in my heart.
और जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है।
Then Eli blessed her and asked her to go in peace.
और एली ने कहा कुशल से चली जा।
And she told, "May God answer your prayers."
और इस्राएल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वरदान दे।
So he always strongly encouraged. Something is written about when she went away. An expression is written about Hannah.
और जैसे वहां पर वो वापस लौटती है एक बहुत अभिव्यक्ति वहां लिखी गई है उसके
in
बारे में।
In chapter 1 Samuel chapter 8 1 chapter 1 verse 18.
उसका 18 वचन में।
So the woman went her way and ate.
और वह स्त्री चली गई और उसने खाना खाया।
She was not declining food.
और उसने पूरी तरह से खाना अब नहीं खाया था।
And it's written, her face was no longer sad.
और उसका मुंह फिर कभी उदास न रहा।
So that's what happens when we cry before God.
और यही होता है कि जब हम परमेश्वर के सामने रोते हैं, पुकारते हैं।
Whatever may be trouble, when you seek God's face.
और जो कोई भी संघर्ष तकलीफ क्यों न हो, जब हम परमेश्वर के मुख को खोजते हैं।
Some of your dear ones may not understand your problem.
और कई बार हो सकता है कि हमारे जो प्रिय लोग हैं, वो भी उस समस्या को नहीं समझ पाएंगे।
Even some of the elders and also may not misunderstand.
और हो सकता है कि अगवे जो प्राचीन वो भी शायद हमें समझ नहीं पाएंगे।
Don't worry.
और उसकी आप चिंता ना करें।
Don't put your trust in any human being.
और किसी भी व्यक्ति के ऊपर अपने भरोसे को न लाएं।
Jesus is answering your prayer. Listen to you.
और यीशु मसीह आपकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है।
When she was comforted.
और जब उसको वहां प्रोत्साहन मिला
her face was no longer sad
और उसके बाद कभी भी उसका मुंह कभी उदास नहीं हुआ
that is how she was transformed
और इस प्रकार वो परिवर्तित हुई
a woman with a such bitterness and sadness and sorrow in her heart because of the oppression by others
और उसको जो चिढ़ाया जाता था जो तकलीफ दी जाती थी उसके कारण जितना अधिक दुख उसके अंदर था
when god comforted her it could be written Her face was no longer sad.
और जब परमेश्वर ने उसको प्रोत्साहित किया सांत्वना दिया तो यहाँ लिखा है कि उसका मुंह फिर कभी उदास नहीं हुआ
So, sister, dear sister, I want to encourage you.
और प्रिय बहनों मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ
Whatever may be the trouble in your heart.
और आपके हृदय में कोई भी कोई ना कोई संघर्ष या संकट क्यों ना हो
Whatever may be the reason for your silent weeping.
और आपके गुप्त रीति से रोने का कोई भी कारण क्यों ना हो
your unexpressed crying of your heart
aur ho sakta hai ki aap apne us rone ke hriday ke rone ko avyakt nahi kar pate
he encourages jesus watching
aur aap protsahit ho kyunki yeshu masi aapko dekhta hai
he is interested to understand your pain
aur ye parmeshwar ruchi rakhta hai aapke dard ko janne ke liye
he is interested to take action on your behalf
aur wo ruchi rakhta hai ki aapke prati us karya ko kare
to transform your life
और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देने के लिए
रिस्टोर योर ब्रोकन लाइफ
और आपके जो टूटे हुए जीवन को पुनर्स्थापित करने के लिए
टू गिव यू होप
और आपको आशा देने के लिए
सो दैट इट कैन बी सेड अबाउट माय फेस इज नो मोर सैड
और ताकि आप भी कह सके कि मेरा क्या मेरा मेरा मन जो है या मेरा मुंह कभी उदास ना होगा
आई डिजायर ईच वन ऑफ योर डियर सिस्टर्स विल हैव सच अ पर्सनल फेथ एक्सपीरियंस फ्रॉम गॉड
और मैं ऐसी इच्छा रखता हूं परमेश्वर की यहां पर बैठे हुए हर एक बहने परमेश्वर के पास से इस अनुभव को प्राप्त करें
नॉट समथिंग टोल्ड बाय अदर्स हन्ना रिसीव दैट पर्सनल एक्सपीरियंस
और किसी के कहने के द्वारा नहीं लेकिन हन्ना ने व्यक्तिगत रूप से इस अनुभव को प्राप्त किया
मेरी मदरलिन रिसीव दैट पर्सनल एक्सपीरियंस
और मरियम मगदली ने व्यक्तिगत रूप से इस अनुभव को प्राप्त किया
that sinful woman received that personal experience.
और ये जो पापी जो स्त्री थी उसने व्यक्तिगत रूप से इस अनुभव को प्राप्त किया
Seek for a life-changing, transforming restoration in your life.
और परमेश्वर से आप पूरी तरह से उस पुनर्स्थापित को परिवर्तन को आप खोजे
Encourage many sisters to come and open your heart and I want you to encourage sisters let the brothers envy seeing your passion and your zeal and your energy
और बहुत बहनों को प्रोत्साहन देता हूँ या उनको मैं अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ पर बैठे और होने दे कि हाँ जो भाई जो बैठे हैं यहाँ पर वो ईर्ष्या आपको देख सके और आपके जो धुन है प्रभु के प्रति उससे वो ईर्ष्या कर सके
What are your share? Seek to share, not from your mind, from your heart.
और जो भी आप यहाँ पर बांटते अपने मन से नहीं लेकिन पूरे हृदय अपने हृदय की गहराई से उसे बांटे
Try to avoid gaps in between.
और जो गैप है उसको अवॉइड करे
Because we are very limited in time, we just run out fast.
और बहुत ही कम समय है इसलिए हम लोग समय का अच्छे से उपयोग करें
We want to hear from as many sisters as possible.
और जितने बहनें जितना अधिक से अधिक हो सके उतने बहनों से आज हम सुनना चाहते हैं
try to speak aim to speak take less time so your quality is likely to be better
और कम से कम आप बोलने का प्रयास करें ताकि आपका जो गुणवत्ता है क्वालिटी वो और बेहतर होगा
एंड If there is time, even brothers can exhort and encourage sisters at the end if there is time.
और उसके बाद यदि अगर समय है तो भाइयों लोग आकर भी बहनों को प्रोत्साहित कर सकते हैं.
प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए. कुछ चीजों को बांटना चाहती हूँ जो पिछले हफ्ते में प्रभु ने मुझे सिखाई. सच में एक वुमेन होने के नाते कई बार मैं देखती हूँ कि रियली वी आर ए वीक वेसल. हम बहुत सारी चीज़ों की चिंता करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में बहुत जल्दी रोने लग जाते हैं. जैसे कि वचन में भी लिखा है कि ये स्त्री तो क्यों रोती है, और बहुत बार बहुत सारी परिस्थितियों को देखकर हम रोने लग जाते हैं. और प्रभु ने एक चीज़ दिखाई कि बाइबल में बहुत सारी आज्ञाएं हैं कि चोरी मत करना, पाप व्यभिचार न करना, या बहुत सारी ऐसी प्रभु ने आज्ञाएं दी हैं जिनको हम मानते हैं कि वो प्रभु की कमांडमेंट है. बट बाइबल में एक आज्ञा प्रभु ने और दी है और वो है कि चिंता मत करना. मैं देख रही थी कि पिछले काफी दिनों से बार बार मैं प्रभु की इस आज्ञा को तोड़ रही थी. जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं लूका चैप्टर 12 वर्स 22 में लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है. कौवों पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं, ना उनके भंडार ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है, और तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है. और तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा दे. इसलिए यदि तुम तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। तो यहाँ पर क्लियरली प्रभु की आज्ञा है, कमांडमेंट है कि हमें चिंता नहीं करनी है। वैसे ही फिलिपियो वर्स फोर्थ चैप्टर फोर वर्स सिक्स में लिखा है, प्रभु में सदा किसी भी बात की चिंता मत करो क्योंकि हर बात में तुम्हारे निवेदन निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। यहाँ भी प्रभु का वचन साफ साफ बोल रहे हैं कि किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। और पहला पत्रस 5:7 में भी लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। तो बार बार हर जगह प्रभु की कमांडमेंट क्लियर है कि हमें चिंता नहीं करनी है। और मैं देख रही थी कि बार बार पिछले दिनों में मैं प्रभु की आज्ञा को बार बार तोड़ रही थी। मेरे ऑफिस में या कुछ चीजें ऐसी हो रही थी जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा टेंशन आ रही थी और बहुत ज्यादा एक भय मेरे अंदर आ रहा था। और वचन बार बार मुझे कहता है कि चिंता मत करो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। और कौओं को देखो, इन पक्षियों को देखो, ये ना बोते ना काटते हैं, तुम्हारा पिता तुम्हारी चिंता इनसे ज्यादा बढ़कर करते हैं। फिर भी बार बार मैं प्रभु की आज्ञा को तोड़ रही थी और मैं देख रही थी कि मुझे इवन मैं सुबह जल्दी उठ जा रही हूँ उस चिंता की वजह से। और वो थॉट बार 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 मेरे दिमाग में आए जा रहे हैं। और जब ये चिंताएं हमारे जीवन में बहुत बढ़ जाती है तो जैसा वचन में लिखा है, मत्ती 13:22 में लिखा है, जब ये चिंताएं हमारे जीवन में बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं जो वचन प्रभु हमसे हमें देता है, जो बार वचन हम पढ़ते हैं कलीसिया में सुनते हैं, तो यहाँ पर प्रभु ने एक दृष्टांत दिया था ऐसी भूमि का जहाँ प्रभु का वचन बोया जाता है। तो एक भूमि, एक ऐसी जमीन है जो मैथ्यू चैप्टर 13:22 ऐसी भूमि के बारे में प्रभु बता रहे हैं कि जो वचन जो झाड़ियों में बोया गया वह है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। मैं देख रही थी कि प्रभु मैं कितनी सारी चीजों की चिंता करती हूँ, मेरे ऑफिस में या पर्सनल लाइफ में जो भी चीजें होती है उन बातों की जब मैं चिंता कर रही हूँ तो मैं उस जमीन की तरह हूं जहां तेरा वचन तो बोल रहा जा रहा है पर प्रभु ये सारी चिंताएं उस वचन को बार बार दबाए जा रही है और वो फल मेरी जिंदगी में नहीं आ पा रहा है जो फल आना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इस संसार की चिंताओं में दबी हुई। वचन में लिखा है कि हमें रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन करना है बट ऑफिस से आकर या इवन सोते टाइम भी थॉट्स में या सुबह उठते ही किस चीज पर मैं मेडिटेट कर रही हूँ, मैं मेडिटेट कर रही हूँ उन प्रॉब्लम्स पे मेडिटेट कर रही हूँ, मैं मेडिटेट कर रही हूँ कि आगे क्या करना है। ये सारी चिंताएं परमेश्वर के वचन को दबा रही है और मेरे जीवन में वो फल नहीं आ रहा था। और मैं देख रही थी कि मैं बहुत ज्यादा परेशान सी हो रही हूँ और मैं प्रार्थना कर रही हूँ पर कहीं ना कहीं शायद मैं पूरी तरीके से उस बोझ को प्रभु पे नहीं डाल पा रही हूँ। इसलिए प्रार्थना करने के बाद भी मैं उस बोझ को फिर से अपने ऊपर ले रही हूँ। तो प्रभु ने मुझे दिखाया कि मैं कैसे उसकी आज्ञा को बार बार तोड़ रही। प्रभु के वचन में साफ लिखा है कि चिंता मत कर, मुझे तेरा ध्यान है। और शायद ये वचन मेरे सिर्फ दिमाग में है और मेरे दिल में नहीं और मैं इसलिए अपनी सुरक्षा को प्रभु में नहीं पा रही थी और चिंता कर रही थी। और बट प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं सच में प्रभु के आगे रोई और मैंने कहा कि प्रभु मैं मुझसे नहीं हो रहा है एंड दिस इज नॉट योर विल दैट आई शुड लिव इन दिस डिफीटेड लाइफ बिकॉज प्रभु ने हमें एक फुलनेस के लिए बुलाया। और मैं सोच रही थी कि हम इतना कुछ सुनते हैं चर्च में, फुलनेस ऑफ लाइफ, फुलनेस इन क्राइस्ट, बट मेरी लाइफ में वो फुलनेस कहाँ है प्रभु? मेरी लाइफ क्यों इतनी डिफीटेड है प्रभु? मैं क्यों उस खुशी में, उस आनंद में मैं क्यों नहीं जी पा रही हूँ प्रभु? पर वचन में जैसे लिखा है कि पवित्र आत्मा के बिना ये सारी बातें असंभव है। तो जब तक पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं होगी इट इज इम्पॉसिबल टू लिव दिस क्रिश्चियन लाइफ। तो मैंने प्रभु से यही मांगा कि प्रभु मुझे वो जो फुलनेस ऑफ होली स्पिरिट चाहिए ताकि कोई भी बातें हमें बार बार चिंतित ना लाए। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें परेशान करती है बट ये प्रभु की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है हमारे लिए कि हम चिंता में रहें। प्रभु चाहता है हमें एक टेंशन फ्री लाइफ देना। प्रभु हमें चाहते हैं कि हम एक विक्टोरियस जिंदगी को जिए जो इम्पॉसिबल है बिना प्रभु के। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम प्रभु से मांगे कि प्रभु मुझे वो फुलनेस ऑफ होली स्पिरिट दीजिए प्रभु ताकि मेरे अंदर से वो सारी बातें बहें, सिर्फ मेरे दिमाग में ये वचन ना रहे। प्रभु ये संसार की चिंता है प्रभु इस वचन को दबा रही है प्रभु पर आप मदद कीजिए कि मैं उस अच्छी भूमि की तरह बन सकूं प्रभु, जहां तेरा वचन जो मैं सुनती हूं, मैं पढ़ती हूं, वो 100 गुना फल लाए। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सच में प्रभु हमारा भला है और प्रभु हमारी चिंता करता है। और जैसे लास्ट एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगी, यिर्मयाह चैप्टर 17:7, धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और जिसकी जिसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। तो प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु चाहता है कि हम सच में हम वो स्त्री बने, वो पुरुष बने जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। मेरी परिस्थितियां चाहे कैसी क्यों ना हो, चाहे ये जॉब रहे नहीं रहे प्रभु, चाहे मेरी हेल्थ कैसी क्यों ना हो प्रभु, मेरे घर में या जिन भी चीजों के लिए प्रभु मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे मिले ना मिले प्रभु, पर यू आर द अल्टीमेट फाउंडेशन ऑफ माई लाइफ लॉर्ड। और जैसे इस वचन में लिखा है कि जब धूप होगी तब भी उसको ना लगेगी और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कोई चिंता नहीं होगी। तो हमारी लाइफ की सिचुएशन भले ही सूखे वर्ष की तरह क्यों ना हो, हमारे वर्क प्लेस में भले ही वो सूखा वर्ष क्यों ना हो, पर फिर भी उसके विषय में कोई चिंता नहीं होगी और तब भी हम फलते रहेंगे। और प्रभु की यही इच्छा है कि हर एक सिचुएशन में हम ऐसे ही फलते रहें और सच में लोग देखने पाए कि इनकी सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों नहीं है, पर फिर भी वो जीवन का जल इनसे बह रहा है। और प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु डिफिकल्ट सिचुएशंस को अलाव हमारी जिंदगी में करता है ताकि हम उसके करीब आ सके। और इन सारी बातों में मैंने देखा कि नथिंग कैन सेटिस्फाई अस एक्सेप्ट जीसस। ये दुनिया की सारी बातें, चाहे वो जॉब हो, चाहे पैसा हो, कुछ भी चीज हो, कोई रिलेशन हो, चाहे आपका खुद हस्बैंड हो, नोबडी कैन सेटिस्फाई यू एक्सेप्ट जीसस। और सारी चीजें सिर्फ हमें खाली करती हैं, सारी चीजें खाली करती हैं। मैं वही प्रभु से कह रही थी कि प्रभु अगर कुछ कोई मुझे भर सकता है तो वो सिर्फ आप भर सकते हो। और जैसे इस वचन में लिखा है उस पेड़ के बारे में कि वो हमेशा फलता रहेगा, प्रभु वो फलने वाला पेड़ प्रभु आप ही हमें बना सकते हो। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने बताया कि हमें चिंता नहीं करनी है और इस चीज को भी सीरियसली लेना है। जब भी हम चिंता करते हैं इट्स लाइक अ सिन वी आर कमिटिंग अगेन एंड अगेन अगेंस्ट गॉड। जब भी हम किसी भी बात की चिंता करते हैं तो प्रभु चाहता है कि हम एक चिंता फ्री लाइफ जिए जहां पे हम किसी भी बात की चिंता ना करें और टोटली प्रभु पर डिपेंड होने पाए। आमीन।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं सोच रही थी कि मैं क्या सबसे बांटू, बट सच में आज का मेमोरी वर्स जैसे था तो मुझे भी लगता था जो मैंने अपने जीवन में सीखा है वही सबसे बांटू। और ब्रदर ने सच में जो मेरे मन में था वही बांटा कि निराशा, कि बहुत लेडीज में बहुत निराशा आती है, खास करके हम हाउस वाइफ घर में रह के निराशा में पड़ते हैं। तो जो निराशा होती है ना किसी मेडिसिन से, ना किसी के साथ बात करने से कम होती है, ना मतलब कुछ भी करके निराशा को हम नहीं हटा सकते। बट हम जैसे हम मसीह में आए हैं तो हमारे पास वो बहुत महत्वपूर्ण ऐसा शस्त्र है जो हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। निराशा हमारे जीवन से जा सकती है, क्योंकि हर पल हम हाउसवाइफ जैसे रहते हैं कि हमें कोई एनकरेज नहीं करता है या हमें बहुत चिंता रहती है। जैसे हस्बैंड वाइफ में कुछ होता है और हस्बैंड कुछ बोलता है तो भी हमें निराशा आती है, बट फिर भी हमें जैसे यीशु मसीह का वर्स कहता है कि ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। सच में प्रभु हमारे लिए ऐसे प्रॉमिस दिया है कि हमें सच में उससे छुटकारा मिलता है जो कि मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है। सच में वही हेल्प जिससे मिलती है वो यीशु मसीह है, ना कि कोई मनुष्य दे सकता है, ना कोई रिलेटिव दे सकता है, ना कोई मेडिसिन दे सकता है। और जैसे जो ने भी अपने आप को कोसा कि मेरा ये जन्म था, ये क्यों हुआ, अपने आप को कोसा, फिर भी उसके उसको जो 42:1-2 में उसको वश मिला, तब अय्यूब यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तुम सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों से यो में से कोई रुक नहीं सकती। मतलब परमेश्वर हर कुछ कर सकता है जो मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं है। यीशु ही है जो जीवन में शांति लेके आता है और हमारा जीवन रिस्टोर करता है। क्योंकि मैंने जीवन में हमेशा पाया है, मुझे जब मैं यीशु में नहीं थी तभी ऐसा लगता था कि ये सब परेशानी मुझे ही है, और सच में मैं इतनी दुखी होती थी कि मतलब ऐसा लगता था ये आज का दिन लास्ट दिन है। बट जैसे ही मैंने ये उद्धार पाया, सच में मैं अपने सभी सिस्टर्स को कहती हूँ, निराशा कुछ नहीं है। जैसे टेस्ट के पहले टेस्टमनी नहीं होती, क्योंकि टेस्ट जाते हैं तभी टेस्टमनी बनती है। तो मैं सबको एनकरेज करना चाहती हूँ कि सच में हमारा प्रभु यीशु जो हमारा हाथ छोड़ने वाला नहीं है। मैं लोग बोलते हैं फिर भी हमें डिसअपॉइंट नहीं होना है, क्योंकि डिसअपॉइंट होना ये कुछ लास्ट स्टेज नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर है जो हमें आशा देता है और हमें रिस्टोर करता है। साम्स 34:18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। और सच में मैंने अपने जीवन में देखा है, सच में प्रभु टूटे हुओं को चुनता है, जो बीमार है उनको ही चुनता है, जो जिनको किसी की ज़रूरत नहीं है वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है, जो टूटे हुआ मन है वही परमेश्वर के पास जाता है। और एक वर्स है आयजया 55:8-9, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। और 9 में लिखा है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जहाँ पे हम बोलते हैं कि मेरा जीवन अभी ख़त्म है, मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं दे रहा है, मुझे कोई एनकरेज नहीं कर रहा है और मेरी चिंताओं को कोई छुटकारा नहीं है, तभी परमेश्वर कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार में पृथ्वी और आसमान का अंतर है जो कि हम नहीं पार कर सकते। और मुझे एक गीत मिला, जैसे मैं सच में मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलता है जब मैं वो सुनती हूँ कि वर्ड उसके ऐसे है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर क्यों तुम जीवन में अशांत रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर क्यों तुम जीवन में अशांत रहते हो, उदास रहते हो, निराश रहते हो। सच में हमारा परमेश्वर भला है और उसकी भलाई जो चखता है उसे ही मिलती है। और भरोसा रखिए कि परमेश्वर सच में, जैसे सारा को उसका थोड़ा वेट करना पड़ता है बट वो उद्धार हमें मिलता है। और सच में हम स्त्री एक बहुत महत्वपूर्ण काम करती है जो कि हमारे लिए बहुत है, कि हम सबके लिए प्रार्थना करें, बच्चों के लिए प्रार्थना करें, जो शायद जेंट्स लोगों को उतना टाइम नहीं मिलता है जितना हम लेडीज़ को मिलता है। तो परमेश्वर हमारे लिए बहुत ही भला है और उसकी भलाई है, इसके लिए हमारे जीवन में भलाई आती है। थैंक यू।
मैं परमेश्वर को आज के दिन को बहुत धन्यवाद देती है। मेरे आयुष्य में बहुत संकट आए और बहुत मैं निराश हुआ, मगर मैं एक कलीसिया ज्वाइन करके सब
सिस्टर और ब्रदर को बोला, मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे परमेश्वर का अनंत जीवन चाहिए, मेरे जीवन में जो कुछ दुख आता है मेरा बच्चों का, तो मैं सबको बोलता है प्रे करो। और मेरे को सब ब्रदर एंड सिस्टर ये करता है, तो मेरे को आज एक वचन मिला है, मेरे बुढ़ापे में मैं अभी आया है, तो मैं प्रभु से ऐसा बोलते हैं, इब्रानियों का 9:27-28, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, मेरे लिए यही है, अभी थोड़ा जीवन का दिन है मेरे लिए। ये वचन पढ़कर मैं मेरे आयुष्य में जवानी के दिन से अब बुढ़ापे के दिन में मैंने पाप कितने किए हैं ये गिन नहीं सकते, मगर ये दिन में मैं वचन पढ़कर याद करके परमेश्वर के पास गिड़गिड़ाना शुरू करती है, परमेश्वर मुझे परखना, मैं कितने तुझसे दूर है, क्या कमी है मुझ में, मुझे क्षमा करना, मुझे अनुग्रह करना, तू तो मेरे चारों ओर ढाल है, तू मेरी महिमा और मस्तक का ऊंचा करने वाला है परमेश्वर, तू मेरी सहायता करना और मेरे जीवन में शांति देना, तेरे वचन का पालन करने के लिए मुझे सिखाना, ये मेरा जीवन प्रभु, प्रभु के न्याय के दिन मेरा जीवन बचाने के लिए मुझ में बुराई है, एक मेरा कैरेक्टर दिन दिन में मैं कम करना चाहती है, और प्रभु से पूछती मेरे हृदय को परखो, तुम जब मेरे पास आएगा तब मुझे बख्शीश देना, परमेश्वर पास आने वाले को दान, आज के मैं किडनी का दुखना मेरे में था, इसके लिए मैं परमेश्वर को आशीष मांगा, क्योंकि मुझ में कुछ कमी है ये परमेश्वर ने मुझे दिखाया, आज मैं इलाज नहीं करती तो आज तुम्हारे सामने मैं खड़ी नहीं रही, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। और एक मेरे को वचन मिला भजन संहिता का 30:55 लिखा, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षमा क्षण भर होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचता है। रात में मैं कितना याद करती है परमेश्वर को, और मेरा पाप परमेश्वर के हाथों में देते हैं। भजन संहिता का 27:4, एक वर मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यज्ञ में लगा रहूंगी कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूँ और उनके मंदिर में ध्यान किया करूँगी। ये वचन मेरे ये बुढ़ापे के दिन में आते हैं बहुत, और 28 इब्रानियों को बहुत मैंने परमेश्वर को वाट जो लोग वाट जोते हैं उसके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा, मृत्यु के बाद हमारा न्याय होगा, यीशु दूसरी बार आएगा अनंत जीवन देने के लिए आएगा, मैं जो लोग वाट जोते हैं उनको अनंत जीवन देने के लिए अपने शरीर में आने वाला परमेश्वर है, मैं धन्यवाद देते ये वचन के लिए कि परमेश्वर कितना अच्छा है, हमें समझता है, धन्यवाद देते।
I want to thank God for today's day.
मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए।
Throughout the week, I was thinking, what am I going to share about?
पूरा सप्ताह भर मैं सोच रही थी कि मैं क्या शेयर करने वाली हूँ।
And nothing really, like you know, encouraged or blessed me. Nothing blessed me till yesterday.
कल तक कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसने मुझे आशीषित किया हो.
So I was thinking and the Lord really reminded me like, are you really thankful for all the blessings that you didn't expect at all?
और प्रभु ने मुझे याद दिलाया कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे प्रभु ने मुझे आशीषित किया पर मैं उन चीजों के लिए धन्यवाद ही नहीं हूँ.
So you know certain things that when you want something you always pray for it and the Lord gives it to you and you're really happy.
कई बार आप बहुत सारी चीजों के लिए प्रार्थना करते हो और प्रभु आपको उनका उत्तर देते हैं और आप बहुत खुश हो जाते हैं.
But sometimes some things that the Lord gives it to us that you know you weren't expecting or didn't you ask for.
और कई बार प्रभु ऐसी चीजें हमें देता है जिसके लिए ना तो हमने प्रार्थना की थी और ना ही हमने एक्सपेक्ट किया था कि वो हमें मिलेंगी.
And that makes your joy at another level and you're very happy.
और वो सारी चीजें आपके आनंद को एक अलग ही ऊंचे स्तर पर ले जाती हैं.
Yeah, so then such kind of blessings I was thinking about and you know there are so many times where the Lord gave me certain things that I wasn't expected and it really makes me feel special.
और मैं ऐसी बातों के बारे में सोच रही थी जिनके जिनका उत्तर प्रभु ने दिया, जो बातें प्रभु ने मेरे जीवन में की और मैं जिन चीजों के लिए मैंने प्रभु से प्रार्थना भी नहीं की थी और जिन चीजों ने और उन उस उत्तर ने मुझे सच में बहुत आनंदित कर दिया.
Yeah, so you know when certain things come and there are two tones for it, you're happy about it and certain things may come where you're sad about it.
जब ऐसी चीजें होती है तो दो टोन होती है, या तो आप बहुत ज्यादा उसके लिए खुश होते हैं या आप उन चीजों के लिए खुश नहीं होते.
Yeah, but sentence can be the same like, oh you brought this to me. So it can be like, oh you brought this to me, or it could be like, why God you brought this to me.
तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अच्छा प्रभु आप ये सारी चीजें मेरे जीवन में लाए, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रभु आप क्यों ये चीजें मेरे जीवन में लाए.
So you heard the previous sisters talk about you know the disappointments and their you know being sad and everything.
और जैसे एक सिस्टर ने बताया कि निराश हो जाना या किसी बात के लिए दुखी जब हम हो जाते हैं.
Yeah, but then we don't find the happiness in those things.
पर वो सारी खुशी हम उन चीजों में नहीं पाते हैं.
Okay, so there were a lot of examples in the Bible where you know certain things that were unexpected but God made it happen.
बाइबल में हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण को पाते हैं जहाँ प्रभु ने उन सारी चीजों को किया जिन चीजों को वो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे.
Like Abraham and Sarah getting a son.
जैसे अब्राहम और सारा को एक संतान की आशीष मिलना.
Moses being drawn out of the water.
या मूसा का मूसा का उस फारो की पुत्री के द्वारा उस पानी में से निकाला जाना.
Then David being called by Samuel to become king.
या दाऊद का सैमुअल द्वारा राजा बनने के लिए बुलाया जाना.
Then those disciples chosen by God in that day.
और उन शिष्यों का यीशु मसीह के द्वारा चुना जाना.
So similarly, even when Jesus came to earth, that was also unexpected.
और वैसे ही यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना भी अनएक्सपेक्टेड था.
Why I say unexpected is because people knew he was coming, but they didn't know when he came.
ये क्यों अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि लोगों को ये तो पता था कि वो आने वाला है पर वो कब.
Didn't know that when he came.
हाँ, क्योंकि लोगों को पता था वो आने वाला है पर उनको ये नहीं पता चला कि वो जब वो आ गया.
Yeah. So Pharisees expected, you know, them to be like very spiritual and you know their expectations, but when Jesus came they were nothing like the Pharisees. He was nothing like them. He was completely different.
फरीसू ने सोचा होगा कि शायद यीशु मसीह उनके जैसा आत्मिक दिखने वाला उनकी तरह होगा, बट जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जैसा फरीसियों ने सोचा था.
Yes, so then I really thank God for all the unexpected blessings.
इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ उन सारी ऐसी आशीषों के लिए जिनके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था.
In Ephesians 5:20.
Ephesians 5:20 में.
Give thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ.
और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो.
I'll read out a small poem that the Lord helped me write.
और मैं एक poem को पढ़ूंगी जो प्रभु ने मेरी मदद करी कि मैं उसे लिखूं.
It's very small. There's always something to be thankful for.
हमेशा यहाँ पे ऐसी चीजें होती है जिसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं.
Something that we cannot take credit for.
कुछ ऐसी चीजें जिनका हम कभी भी क्रेडिट नहीं ले सकते हैं.
When the Lord opens the eyes of the blind.
जब प्रभु ने अंधों की आंखों को खोला.
Numerous blessings they may find.
उन्होंने बहुत सारी आशीषों को पाया होगा.
सम बिग सम स्मॉल,
कुछ बड़ी कुछ छोटी.
सम एक्सपेक्टेड नॉट एट ऑल,
जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा.
सो बी थैंकफुल डियर वन,
तो हमेशा धन्यवाद बने रहो.
फॉर अस इज द विक्ट्री, द लॉर्ड हैज वन,
क्योंकि विक्ट्री हमारी है.
थैंक्स बी टू गॉड,
प्रभु का धन्यवाद.
I want to thank God for all that I could hear from the sisters.
मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ वो सारी बातें जो मैंने बहनों से सुनी.
I was encouraged by what Radhika shared, that we don't need to be discouraged anytime and never be anxious for anything.
मुझे उस चीज से बहुत आशीषित मिली जो सिस्टर ने भी शेयर किया कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, ना ही हमें कभी निराश होना है.
Something that the Lord was speaking to me was for my personal experience.
प्रभु मुझे बहुत बार कुछ उन पर्सनल एक्सपीरियंस से लेकर गया.
लाइक इन माय हाउस आई गेट सनलाइट वेरी रेयरली, लाइक कमिंग फ्रॉम द विंडो.
हमारे घर में जो सूरज की रोशनी हमारे विंडो से बहुत तेज,
वेरी फ्यू,
बहुत कम आती है.
मोस्टली इन द समर्स I will get from one of the glass a little ray of light coming.
तो गर्मियों के दिन में एक छोटे से ग्लास से बहुत कम रोशनी घर के अंदर आती है.
No, I see a ray of light coming.
मैं वो उस प्रकाश को मेरे घर में आते हुए देखा.
I always saying that my house is very clean.
मैं हमेशा अपने घर को एकदम साफ देखती हूँ.
But when the last this May month when once when the ray of light came in.
पर जब मई में वो जब सूरज का प्रकाश, वो जो रोशनी जब मेरे घर के अंदर आई,
I saw a lot of dust around.
तो मैंने बहुत सारी धूल को देखा घर में.
बहुत a lot of it just moving here and there.
और बहुत सारी धूल इधर उधर ऐसे उड़ रही थी.
And that was the time that the Lord spoke to me.
और उस समय प्रभु ने मुझसे बात की.
That there is so much of things in your life that you are not able to see.
तुम्हारे जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें जिसे तुम नहीं देख पा रही हो.
And this verse came to me from Ephesians 5.
और ये वचन मेरे Ephesians 5 में से ये वचन मेरे मुझे आया.
Verse 13.
वचन 13.
5:13.
5 का 13.
But all things become visible when they are exposed by the light. For everything that becomes visible is light.
पर जितने कामों पर उलाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होंगे, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है.
सो व्हेन आई अप्रोच अ होली गॉड,
इसलिए जब मैं उस पवित्र खुदा की ओर जाती हूँ.
नाउ राइट नाउ व्हेन वी आर बिलीवर्स फॉर मेनी इयर्स वी थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर राइट इन आवर लाइफ.
जब हम बहुत सालों से प्रभु में होते तो हम सोचते कि हमारी जीवन में बहुत सारी बातें सही है.
But when we really approach God in His holiness,
पर जब हम उसकी पवित्रता में प्रभु की ओर देखते हैं,
and we come nearer to God,
और प्रभु के और नजदीकी में आते हैं,
because He is so holy, the things that we have not seen in our lives are exposed.
क्योंकि वो बहुत पवित्र है और हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें को हम नहीं देख पाते हैं जिन्हें प्रभु ने एक्सपोज नहीं किया.
So from that onwards, I was seeing that there are so many things in my life that still I have not come to light to.
तो उस दिन से मैंने देखा कि मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर वो प्रकाश नहीं आया है.
So I really need to come more and more closer to God so that I can cleanse myself of all that filthiness, all that dust that is still remaining in my life.
इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं प्रभु की नजदीकी में और अधिक आऊं, ताकि वो धूल, वो मिट्टी, वो को मैं और अधिक प्रभु के इस प्रकाश में देख सकूं.
Or else we can be just satisfied and say that I'm a believer for so many years, God has saved me and now I'm on my way to heaven.
और या फिर हम इस बात में संतुष्ट हो सकते हैं कि हम बहुत सालों से प्रभु में हैं और मैं अब स्वर्ग की ओर जा रही हूं.
In verse 14 it says, for this reason it says, awake sleeper and arise from the dead and Christ will shine on you.
और इस कारण वे कहता है, हे सोने वालों, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी.
When Jesus Christ will throw his light on us, we will see there are so many things in our lives still under darkness and there is so much of filth in us still.
जब प्रभु यीशु मसीह की रोशनी हमारे जीवन में आएगी तो हम देख पाएंगे कि ऐसी बहुत सारी चीजें जो अंधकार में, जहाँ पे बहुत सारी गंदगी है, धूल है, मिट्टी है.
I really need to repent and come more and more closer to Jesus so that all the things which are hidden can be exposed.
और बहुत जरूरी है कि मैं प्रभु की नजदीकी में आऊं, पश्चाताप करूं, ताकि वो सारी चीजें जो छुपी हुई है, अंधकार में है, वो उजाले में आ सके.
One more thing I want to encourage the sisters is that never let yourself be in condemnation.
और एक और चीज जिसने मुझे प्रोत्साहित किया कि अपने आप को कभी भी उस दोष भावना में नहीं रखना.
Many times we sisters, when we hear some things, maybe for some sisters it's their husbands or sometimes it's our children. Many times now it is our children. We feel very down. We feel very, condemned. We feel that we have failed.
जब बहुत बार हम बहनें अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में किसी से सुनते हैं तो हम बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अपने ऊपर दोष लगाने लग जाते हैं.
सो इवन व्हेन वी हियर समथिंग लाइक दैट, वी डोंट नीड टू बी अंडर कंडेमनेशन, बट वी कैन रिपेंट एंड आस्क गॉड टू हेल्प अस एंड गिव अस द विजडम्स टू ब्रिंग अप आवर चिल्ड्रन इन द फियर ऑफ गॉड.
जब हम इन सारी बातों को सुनते हैं तो हमें निराश नहीं होना है, बल्कि हमें पश्चाताप करना है, प्रभु से मांगना है कि प्रभु हमारी मदद करे.
सो नेवर गिव इन टू कंडेमनेशन.
इसलिए कभी भी उस दोष भावना में ना आए.
बट वी नीड टू सीक जीसस हु इज आवर होप ऑलवेज.
और हमें यीशु मसीह को देखना है जो हमारी आशा है.
थैंक यू.
मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ. यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं तो हमें बहुत उत्साहित होना है कि प्रभु के लिए हम तैयार हो. हम नहीं जानते हमारे लिए कितने दिन इस पृथ्वी पे रखा है, तो प्रभु के कि हम किसी पे दोष ना लगाए. कि अंत रोमियो का पहला दूसरा अध्याय का दूसरा वचन, अंत है दोष लगाने वाले, तो कोई क्यों ना हो, तू निरंतर है. क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को दोषी ठहराता है. इसलिए कि तू दोष लगाता है स्वयं ही वो काम करता है. हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है. हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वाले पर दोष लगाता है और आप ही वे काम करता है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या उसकी कृपा और सहनशीलता धीरज रूपी धन को तू जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर कृपा तुझ मन फिराव का अवसर सिखाती है? प्रभु का धन्यवाद. हर दिन हमको प्रभु में जीना है कि हम पवित्र आत्मा से जिए. हम हमारे बच्चों के लिए एक उदाहरण होना चाहिए कि किस तरह हम उसको बढ़ाएं. हमारे पड़ोसी के लिए एक उदाहरण होना चाहिए. और आत्मा में जीने का इच्छा करे, शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं. शरीर की इच्छा हमेशा संसार की चीज़ें हमें प्रकट करेगी. जैसे जहाँ हम देखते हैं लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं, तो जब कोई नहीं देखता हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर के साथ में छुपा छुपी खेलते हैं. ऐसे हमको लग रहा है कि हम सिद्ध हैं, लेकिन परमेश्वर से मांगे कि हर दिन हमारे पापों को दिखाए, ताकि हम किसी और भाई और किसी और बहनों पे दोष ना लगाए. क्योंकि दिन बहुत कम है, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं, तो हमको अपने आप को तैयार करना है, हमारे बच्चों को तैयार करना है. हमारे बच्चों के अंदर परमेश्वर का वचन डाले और उन्हें उत्साहित करे कि परमेश्वर के लिए जिए. उनके अंदर भय डाले परमेश्वर का, और उन्हें संसार के पाप से बचाने के लिए हमें भी पहले उस पाप से विजयी पाना है. परमेश्वर से रो के प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें उससे निकाले, उस पाप से निकाले. क्योंकि अगर हमारे अंदर भय नहीं है तो हम बच्चों के लिए भी कुछ हिम्मत नहीं बन सकते. हमें परमेश्वर का भय होना ज़रूरी है ताकि हम पाप नहीं करें. और परमेश्वर से रोते हुए विनती करें कि परमेश्वर मेरे भीतर के पाप मुझे दिखा, ताकि मैं किसी और भाई के विषय में बातें ना करूं. क्योंकि कई बार हम दोष लगाते हैं. रोमियो में तीसरे अध्याय के 10 अध्याय में लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है, उनके होठों में शाप का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है. हमें परमेश्वर से मांगे कि हमारा जीवन इस शब्द की जैसा नहीं, कड़वाहटों की. जब कोई हमारे सामने नहीं हो तो हम किस तरह उसके विषय में बातें करते हैं? तो हमारा जीवन, हमारे जो हमें सताता है उनके लिए भी एक आशीष ही ठहरे. हमें जो सताते उनको हम आशीष ही दे, श्राप नहीं दे. उनके लिए एक उदाहरण बने. हमारे बच्चों के लिए, हमारे पति के लिए हम एक उदाहरण बने कि हम परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमारे भीतर के पाप हमें प्रकट कर. हर दिन हम हमारे पाप को देख पाएंगे अगर हम परमेश्वर के पास जाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर. हर दिन पवित्र आत्मा की विनती करनी चाहिए हमें कि ताकि हम हमारे पाप से छुटकारा पा सकें. हम अगर हमारे पाप को देखेंगे तो किसी पे भी अवसर नहीं मिलेगा कि हम किसी और को दोष लगाएं. धन्यवाद.
प्रभु के नाम की स्तुति हो. आज यहाँ पर आकर मालूम पड़ा कि बहनों को बांटना है वचन से या फिर जो उनकी जिंदगी प्रभु ने किया है. बैठ के मैं वही सोच रही थी कि मैं क्या बांटूं मेरी जिंदगी में, क्योंकि प्रभु ने इतने अद्भुत कार्य और इतने कार्य किए कि समय कम पड़ता है. बट मेन चीज़ जो मेरी जिंदगी में प्रभु ने हर पल किया है, एक चीज़ प्रभु ने सिखाया ये है कि एक फैमिली को चलाने के लिए या फिर एक फैमिली आगे एक स्पिरिचुअली पावरफुली जाने के लिए मेन पर्सन वुमन है. शी कैन बिल्ड द फैमिली, ओनली एवरीथिंग इज़ इन हर हैंड. वो प्रभु ने बहुत अच्छी तरीके से मुझे सिखाया. प्रभु ने काफ़ी दौर से मुझे लेकर गए हैं, काफ़ी टफ टाइम्स देखे हैं, लेकिन वो सारे सिचुएशंस में प्रभु ने मुझे बहुत अच्छे से दिखाया कि ही इज़ रियली स्टैंडिंग नेक्स्ट मी, कि प्रभु मेरे साथ है. मैंने मेरे यंग एज में आई वॉज़ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन. मैं कभी कुछ शेयर नहीं करती थी. बट आफ्टर मैरिज आई स्टार्टेड लर्निंग व्हाट लाइफ इज़. कहते हैं ना कि यंग एज में ऐसा रहता है कि हर कोई आपकी तारीफ करता है कि बेटा तुम अच्छा कर रहे हो. स्पेशली फॉर यंग गर्ल्स हु इज़ हियर, वी गो टू चर्च. बट ऐसा रहता है कि हम जस्ट नेम सेक के लिए चर्च में जाते हैं, वी सिट. मोस्टली यंग गर्ल्स या यंग बच्चों के दिमाग में यह रहता है कि ओके, फ्रेंड्स से सबसे मिलने होगा रादर देन गोइंग फॉर चर्च के वचन सुनने से भी ज़्यादा उन्हें ऐसा दिमाग में रहता है कि ओके, सबसे मिलने होगा, सभी फ्रेंड्स से मिलने होगा. वो एक एनर्जी रहता है, पर ज़्यादातर ध्यान वचन में नहीं रहता है. सेम थिंग था मेरे लाइफ में भी. मैं भी ज़्यादा वचन को ध्यान नहीं देती थी. बट धीरे धीरे जैसे जैसे जिंदगी की रियालिटी, जैसे ब्रदर ने कहा कि वी हैव टू लिव इन अ रियालिटी, बिकॉज स्पेशली एज अ गर्ल, क्योंकि मैं भी उसी एक दौर से गुजरी. वी आर इन अ फेरी लैंड, वी इमेजिन अ लॉट. हम ऐसी एक दुनिया में जाते हैं, फैंटेसी वर्ल्ड में, कि सब कुछ एकदम खूबसूरत सा होगा, बहुत अच्छा सा होगा. लेकिन इन रियालिटी इट्स नॉट लाइक दैट. वी हैव टू लिव वॉट गॉड has told us. मतलब हमारी ज़िंदगी के हर एक दौर में प्रभु ने एक रीति बना के रखी है, उस दौर से हमें गुजरना है. तो जब हम वो फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर आते हैं तो रियलिटी देखते हैं, तो इट्स वी फाइंड इट बिट डिफिकल्ट टू लिव. सो दिस इज़ वॉट आई वॉज, एक फैंटेसी वर्ल्ड में थी. बन रियलिटी जब मैंने देखना शुरू किया तो आई वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट. बट वो हर पल में प्रभु ने मुझे बहुत ही मजबूती से चलाया, और मेरी आत्मिक ज़िंदगी में काफ़ी टकरार आए जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे सोच और मेरी समझ के कारण. आत्मिकता में मैं ज़्यादा नहीं बढ़ पाई, लेकिन वहाँ पर भी प्रभु ने मुझे क्या कहते हैं, अभी जैसे प्रभु के दास ने कहा कि मेरी मैग्डलिन पहली थी जो जिसने यीशु को देखा, जिसने यीशु से बात किया. तो अगर हम औरत एज ए वुमन, अगर हम सच में दिल टूट कर प्रभु के सामने बात करें, वो झट से उतर के आने वाला परमेश्वर है. क्योंकि ये मैंने खुद की ज़िंदगी में ये महसूस किया है. जब मैं बीमार थी, आई वॉज मौत के जिस मुँह में थी, वो समय मैंने प्रभु के वचन को उस समय इतना मजबूती से जाना कि सच में वचन जीवित है और वचन से असंभव कुछ नहीं है. तो भले मैं उस दौर से गुजरी, इट वॉज़ अ टफ टाइम, तभी मेरे लिए वो काफ़ी एनकरेजिंग था. फिर वापस मैं मेरी ज़िंदगी में बच्चों के साथ, परिवार के साथ वैसे बिजी हो गए, वापस स्पिरिचुअली मेरा थोड़ा लाइफ डाउन हो गया. बट अभी दो हफ्ते से ऐसा हो गया कि मैं धीरे से वापस अपने आप को एनकरेज कर आत्मिकता में बढ़ने लगी. ऑटोमेटिकली कुछ लोगों के फ़ोन वापस आने लगे जो ब्लड कैंसर से पीड़ित थे. कभी सोचा नहीं था कि वापस वैसे मुझे फ़ोन कॉल्स आएंगे, क्योंकि मैं उनके लाइफ के साथ रिलेट कर पा रही थी कि वो लोग किस पेन में हैं, किस ट्रबल में हैं. तो अभी एक बहन के लिए दो हफ्ते पहले एक बहन का टॉपिक आया था जिसको ब्लड कैंसर था. मैंने उस परिवार से बात किया, उस बहन से भी बात किया, उनके पति से भी बात किया. वो लोग सेवकाई में थे, मदुरई में कहीं पे हैं, पर मैं उन्हें जानती नहीं हूँ. मैंने मेरे लाइफ में जो गॉड ने किया मैंने उनके साथ शेयर किया. बट मुझे कल मैसेज आया कि वो बहन अभी इस दुनिया में नहीं रही. रियली मुझे मेरे دل کو بہت ٹھیس پہنچا. میں نے کہا کہ گاڈ, وہ لوگ منسٹری میں جسٹ آئے تھے, ان کے لیے وہ کافی ٹف تھا کہ سڈنلی وہ بہن بلڈ کینسر سے جا رہی ہے. تو میں نے انکریج کیا ان کو کہ ایسا نہیں ہے, پربھو آپ کو چلائے گا. لیکن کل جب میں نے سنا کہ وہ بہن اس دنیا میں نہیں رہی, تو آئی واز تھنکنگ اٹس بین 7 years فار می دیٹ آئی ایم لیونگ ٹل ناؤ وداؤٹ ٹیکنگ میڈیسن اور اینی کیمو تھراپی, جبکہ وہ سسٹر کیمو تھراپی لے رہی تھی, انڈر ٹریٹمنٹ میں تھی, پر اسٹل شی از نو مور. تو میں پربھو کے اس چمتکار یا ہاتھ کو کبھی کبھی محسوس کرتی ہوں کہ بنا کوئی دوائی لیے, جب ہم کہتے ہیں نا ہم شونیہ کی اوستھا کو اگر لے لیتے ہیں نا, تو سچ مچ پرمیشور ہماری زندگی میں کاریہ کرتا ہے. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں, وہاں پر پربھو کا کاریہ کرنے لگتا ہے. تو اسی پرکار پربھو نے مجھے جو کچھ بھی دیا ابھی تک, مجھے جو چلایا, کافی تکلیفیں تھیں, لیکن ہر پل مجھے پربھو نے یہ بتایا کہ ہی از اسٹینڈنگ نیکسٹ ٹو می. اور بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم دل سے پکارے کہ پرمیشور آپ مجھے سنبھالے, مجھے چلائے, تو سچ مچ وہ اتر کر آ کر ہمیں چلائے گا. ایسے اسمبھو کچھ نہیں ہے, ہمیں نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھ سے ہوگا نہیں یا پھر میں نہیں کر پاؤں گی. بٹ ایوری ٹائم پرمیشور یہی بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے, تم سے یہ ہو سکتا ہے, اور ہم بہنیں ہی ہیں جو ہمارے پریوار کو آگے بڑھا سکتی ہیں, پریوار کو بنا سکتی ہیں, اور اپنے بچوں کو یا اپنے ہسبینڈ کو, ہمارے پریوار کے باقی سدسیوں کو پربھو میں لے آنے کے لیے اگر ہم ایک بار گھٹنا ٹیک کے دل ٹوٹ کر پرارتھنا کریں, تو سچ مچ ہر چیزیں اپنے آپ ایک جگہ آ جائیں گی, اور پرمیشور اپنے صحیح راستے پر ہم سب کو لے کے آئے گا. پربھو آپ سب کو آشیش کرے. بنتی کرتی ہوں کہ میں تھوڑے رف لائف سے جا رہی ہوں, آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے اور میرے پریوار کے لیے سوچ کے پرارتھنا کیجیے. اسی وشے سے دھنیہ.
ویری انکریجنگ ٹو ہیئر فرام آل دا سسٹرس. بہت ہی اتساہت کرنے کی وچن ہے, سننے کے لیے یہ اچھا لگا. بٹ پرمیشور کچھ کہنا چاہتا ہے. ایک گانا ہے جس کے دوارا اٹ ول اسپیک ٹو ایوری ون, سب سے باتیں کرے گی. سمتھنگ واٹ گاڈ وانٹس ٹو ٹاک اینڈ ٹیل ایوری ون آف ٹو ایوری ون, سب کو پرمیشور کہنا چاہتا ہے. اور وہ گانا ایسا ہے کہ کرتا ہوں میں تیری چنتا, تو کیوں چنتا کرتا ہے. آئی ایم worried about you, why are you worrying? اور کہتا ہے کہ آنسو کی گاٹی میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا, اور when you are in tears, when you are weeping, I will never leave you. اور اس کے بعد ایسا لکھا گیا ہے کہ you will see my glory, میری مہیما تو دیکھے گا, and you give yourself to me, خود کو میرے ہاتھوں میں دے دے, میری شکتی میں تجھ کو دیتا ہوں, آئی گیو یو مائی پاور, اور چلاؤں گا ہر دن میری کرپا میں. اور اس کے بعد لکھا ہے اف ایوری ون فوگیٹس یو, سبھی تجھے بھولیں گے تو بھی, ول آئی فوگیٹ یو. یہاں پہ پربھو کہتا ہے کہ کیا میں تجھے بھولوں گا. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں میں تجھے اٹھا کر, ہی لفٹس اس اپ ان ہز ہینڈ, اور چلاؤں گا ہر دن, وہ ہر دن ہمیں چلا, ہی ول لیڈ اس تھرو آؤٹ دا ڈے. اینڈ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہی ریمائنڈس اس دیٹ آئی ایم دی گاڈ آف ابراہم, ابراہم کا میں پرمیشور ہوں, ادبھت کاریہ کیوں نہیں کروں گا, وائی ول آئی ناٹ ڈو ونڈرز, ادبھت کاریہ کیوں نہ کروں گا. لال سمندر میں راستہ بنایا ہے پرمیشور, ہی سیز دیٹ آئی ہیو میڈ وے ان دا ریڈ سی, اینڈ ٹوڈے آلسو, ابھی بھی میں کر سکتا ہوں, ابھی بھی میں کرنے کی یوگیہ رکھتا ہوں. ٹوڈے آلسو آئی ایم وردی ٹو ڈو دیٹ ورک ٹوڈے, اور میں کرتا ہوں تیری چنتا.
پربھو کو دھنیواد دیتا ہے کہ آج میرے کو ٹائم ملا آنے کے لیے بھی اور وچن بانٹنے کے لیے بھی. جیسے بردر ابو صبح بولا کہ کبھی بھی تو روئے گا تو میں ساتھ ہے, تو میں ایجیکل 18 میں نہیں मी मराठी मध्ये बोलते, मला हिंदी जमत नाही जास्त. 18:16-20
अझेकेल का पुस्तक.
कोणावर जुलूम करीत नाही कर्जदाराचे ग्रहण अडकून ठेवीत नाही, कोणाला लुटीत नाही, भूकेलास अन्न देतो, मोगड्यास वस्त्र लावितो, दिनांची हानी करण्यापासून आपल्याला हात आवरितो, वाढीदिवाढी करीत नाही, व्याज घेत नाही, माझे निर्णय पाळीतो, माझ्या नियमाप्रमाणे चालतो, तो आपल्या बापाच्या अधर्मामुळे मरावयाचा नाही, तो खात्रीने वाचे, त्याच्या बापाविषयी म्हणाल तर त्याने जुलूम केला, आपल्या भावाला लुटले व आपल्या लोकात अनाचार केला, म्हणून पहा तो आपल्या अधर्मामुळे मरेल. तरी तुम्ही म्हणता बापाच्या दुष्कर्माचा भार पुत्राने का वाहू नये, हे पहा मुलगा न्यायाने व धर्माने वागला त्याने माझे सर्व नियम पाळून त्याप्रमाणे वर्तन केले तर तो खात्रीने वाचेल. जो जीवात्मा पाप करील तोच मरेल. मुलगा बापाच्या पातकाचा भार वाहणार नाही आणि बाप मुलग्याच्या पातकाचा भार वाहणार नाही. धार्मिकेला त्याच्या धार्मिकतेचे फळ मिळेल, दुष्टाला त्याच्या दुष्टतेचे फळ मिळेल. मी धन्यवाद वाचू.
यशकेल उसका 18:15 से आगे, अर्थात न तो पहाड़ों पर भोजन किया, न इसराइल के घरानों की मूर्ति की ओर आंख उठाई हो, न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, न किसी पर अंधेर किया हो, न कुछ बंधक लिया हो, न किसी को लूटा हो, वरन अपनी रोटी भूखे को दी हो, नंगे को कपड़ा उड़ाया हो, दीन जन की हानि करने से हाथ रोका हो, ब्याज और बढ़ती न ली हो, मेरे नियमों को माना हो और मेरे विधियों पर चला हो, वह अपने पिता के अधर्म के कारण न मरेगा वरन जीवित ही रहेगा. उसका पिता जिसने अंधेर किया और लूटा, अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किया, वही अपने धर्म के कारण मर जाएगा. तो भी तुम लोग कहते हो कि क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता. जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए और मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चलता हो तो वह जीवित ही रहेगा. जो प्राणी पाप करे वही मरेगा. न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का. धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा.
मैं धन्यवाद देते वचनाला की मला हे वचन लागल्याप्रमाणे झालं. लास्टला वचन बोलते धार्मिकाला त्याच्या धार्मिकतेचे फळ मिळेल.
ये वचन मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया और मेरे हृदय को लिखा कि जो धर्मी है उसको अपना अपना जो उसके धर्म के अनुसार उसको प्रतिफल मिलेगा.
आणि देवाने आपल्याला या थोडक्या दिवसात चांगलं वर्तन करण्यासाठी उभं केलेलं आहे.
और परमेश्वर ने हमें इन कम दिनों के अंदर एक अच्छा वर्तन या अच्छा स्वभाव रखकर जीने के लिए हमको अनुग्रह दिया है.
आणि जसं मी कैम्प मध्ये ऐकलं ब्रदर इयनच की आपण मेलेले नाहोत जिवंत आहोत.
जैसे ब्रदर इयन ने कैम्प में कहा कि हम लोग मरे हुए नहीं लेकिन हम जीवित लोग हैं.
कधी कधी कुठलं संकट आलं, कष्ट आले, दुःख आले तर आपण निराश होतो आणि सुकलेले सारखे होतो.
और कई बार कई दुख और संकट तकलीफ आने के कारण कई बार हम सूख जैसे जाते हैं.
पण देवाने सांगितलेलं आहे, आपल्याला प्रॉमिस दिलं या वचनाद्वारे की आपण सुकलेले नाही आहेत पण आपण जिवंत आहोत.
लेकिन इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हमें ये वायदा दिया है कि उसके वचन के अनुसार कि हम सूखे हुए नहीं लेकिन हम जीवित है.
आणि देवाने सांगितलेलं आहे की ये वचन ये सर्व काही ढळेल पृथ्वीचं पण ये वचन शेवटपर्यंत टिकणार आहे.
और परमेश्वर ने कहा है कि सब कुछ टल जाएगा इस पृथ्वी पर लेकिन उसका वचन हमेशा कायम रहेगा.
धन्यवाद देते के या वचनाला कि मैं आज इथे उभे राहून ये वचन सांगितल्याबद्दल.
और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि वचन को मैं खड़े रहकर यहां पे बता
पूरे भी मैं ये पालन करना रहे
और इसके आगे भी मैं इस वचन का पालन करूंगी.
धन्यवाद
धन्यवाद.